पाठ 32 अध्याय 35। अध्याय 35 में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन यूनानी और अंग्रेजी अनुवादों के कारण यह हमारी नजर से काफी हद तक छिपा हुआ है। इसलिए हम इस अध्याय को पढ़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ बिंदुओं को जोड़ेंगे जो सदियों से अस्पष्ट रहे हैं। हम इस अवसर का उपयोग कुछ ऐसे कठिन विषयों और सिद्धांतों की समीक्षा करने के लिए भी करेंगे जिन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अध्याय 35 में आगे आने वाली सभी बातों के लिए आधारशिला रखते हैं।
उत्पत्ति 35 सब पढ़ें। पद 1 में परमेश्वर याकूब इज़राइल को आदेश देता है कि वह अपना सामान बांधे और बेतेल चला जाए, वह स्थान जहां कई वर्ष पहले याकूब कनान से मेसोपोटामिया जाते समय रुका था, और उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीरही पर स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते हुए देखा था। बदले में याकूब ने अपने पूरे घराने को आदेश दिया कि वे अपनी सभी मूर्तियों और मूर्ति पूजक प्रतीकों से छुटकारा पा लें। इज़राइल के बेटों द्वारा शेखेम को लूटने और शेखेम के कई लोगों को ले जाने से इज़राइल के कबीले में कई नए लोग शामिल हुए, और ये नए लोग विशेष रूप से अन्य देवताओं की पूजा करते थे। इससे भी अधिक, याकूब के बेटों ने शेखेम की देव मूर्तियों को चुरा लिया होगा, क्योंकि उनके विचार से इससे शेखेम से शक्ति छीन ली गई होगी। आक्रमणकारी या विजेता के लिए अपने दुश्मन के देवताओं को चुराना आदर्श था, क्योंकि यह बहुत ही ठोस तरीके से उनके दुश्मन को अपमानित करने के अलावा उन्हें कमजोर भी करता था।
याकूब को दिए गए परमेश्वर के निर्देश का वाक्य विन्यास उस समय की मानसिकता को दर्शाता है, और मेरे लिए यह इज़राइल के अपने नवजात राष्ट्र को विकसित करने और परिपक्व करने में यहोवा के सर्वोच्च धैर्य को दर्शाता है। इसलिए मैं इस पर कुछ मिनटों के लिए विचार करना चाहता हूं। ध्यान दें कि पद 1 के उचित अनुवाद में परमेश्वर ने याकूब से कहा है कि वह बेतेल में उस परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। उसने यह नहीं कहा कि मेरे लिए एक वेदी बनाओ। यहोवा के लिए खुद को उस परमेश्वर के रूप में संदर्भित करने का यह एक अजीब तरीका है जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था, क्योंकि इसमें एक अंतर्निहित निहितार्थ है कि अन्य देवता भी हैं, लेकिन वह विशेष देवता है जो बेतेल में याकूब के सामने प्रकट हुआ था। उस युग के पारंपरिक तरीकों के अनुसार यह माना जाता था कि देवता कई थे और वे विशिष्ट कार्य विवरण के अलावा क्षेत्रीय भी थे, और विभिन्न क्षेत्रों के देवता अन्य क्षेत्रों के देवताओं के खिलाफ लड़ते थे, या शायद बेहतर यह कि एक देवता दूसरे से अधिक शक्तिशाली था। इसलिए उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में बारिश का देवता केवल मेसोपोटामिया के लिए बारिश का देवता था, वह कहीं और बारिश के लिए जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि अन्य स्थानों पर बारिश के अन्य देवता थे। हर कोई इस तरह से हर कोई विश्वास करता था, और हम वास्तव में यहोवा को यह कहते हुए नहीं पाते कि वह एकमात्र ईश्वर है जो अस्तित्व में है, बल्कि वह खुद को याकूब के ईश्वर के रूप में चित्रित करता है। हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यहोवा ने याकूब से कहा हो, जबकि वह मेसोपोटामिया में था, कि वह वहां उसके लिए एक वेदी बनाए, और मुझे संदेह है कि यह हुआ, क्योंकि यहोवा एक ऐसा ईश्वर था जो मेसोपोटामिया से नहीं बल्कि कनान की भूमि से जुड़ा था। लेकिन अब जब याकूब कनान में वापस आ गया था, तो वादा किए गए देश के ईश्वर यहोवा ने याकूब से उसके लिए एक वेदी बनाने को कहा। याकूब को यह बात बिल्कुल सही लगी, और शायद उसके कबीले के ज्यादातर लोगों को भी, यहां तक कि नए लोगों को भी, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि असलियत क्या थी।
मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम तोरह को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यहोवा कौन है और वह कैसे काम करता है, और उसका प्रभाव क्षेत्र कहां से शुरू और कहां समाप्त होता है। यह इस्राएलियों के दिमाग में उतना ही अस्पष्ट था जितना कि यह अवधारणा कि किसी के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। नियुचित रूप से निर्गमन के बाद यहोवा ने खुद को और अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया, लेकिन लोग सदियों पुरानी परंपराओं को यूं ही नहीं भूल जाते, बल्कि इज़राइल ने यहोवा को अपने सभी लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों और परंपराओं के संदर्भ में समझने की कोशिश की,
उसे बस मिश्रण में जोड़ दिया गया। यहोवा उनका परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। लेकिन क्या हुआ जब उनके परमेश्वर ने बुद्धि और शक्तियों का मिलान किसी दूसरे देश के लोगों के लिए एक परमेश्वर से किया? यह बात उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। तो अब्राहम को बुलावा मिलने के 200 साल बाद भी हम यहां हैं और अभी भी याकूब को यह समझ में नहीं आया है कि परमेश्वर कौन है, और उसकी पत्नियां और अन्य लोग जिन्होंने खुद को उसके परिवार का हिस्सा बना लिया है, वे भी निश्चित रूप से इसे नहीं समझ पाए हैं। इसलिए यहोवा द्वारा चल रही शिक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हम याकूब को यह कहते हुए देखते हैं, ठीक है, अब हम मेरे परमेश्वर के प्रभाव के क्षेत्र में हैं और हम उनके लिए एक वेदी बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे देवता मेरे परमेश्वर को परेशान करें, और इसके अलावा तुम्हारे देवता यहां ऐसे क्षेत्र में बेकार हैं जो उनके प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र से बाहर है वैसे भी।
तो मुझे दे दो और मैं उन्हें एक पेड़ के नीचे दफना दूंगा। उन्हें क्यों दफनाऊं? उन्हें क्यों ना तोड़ दूं या जला दूं? क्योंकि यह उनके देवताओं का खंडन था, न कि यह पूर्ण विश्वास कि वे देवता अस्तित्व में नहीं है। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक और कथन दिखाने जा रहा हूं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि याकूब और इसराइली अभी भी उन परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे जिन्हें वे प्रिय मानते थे, फिर भी वे पूरी तरह से गलत थे। पद 4 में बलियों से छुटकारा पाने के बारे में जो बात कही गई है उसका परमेश्वर द्वारा कांड के आभूषणों की निंदा करने से कोई लेना देना नहीं है। ये अंगूठियां विदेशी देवताओं के सम्मान में पहनी जाती थीं। वे ताबीज थे, इसलिए उन्हें भी उनके बीच से हटाकर दफना दिया जाना था। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उन्हें कपड़े बदलने और खुद को शुद्ध करने का भी निर्देश दिया गया था। अपने कपड़े बदलने का मतलब है अपने कपड़े धोना या साफ कपड़े पहनना। कपड़े बदलना शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का एक सामान्य हिस्सा था। ये मूर्तियों और प्रतीक उस पेड़ के नीचे दबे हुए थे जिसे कुछ बाइबल ओक का पेड़ और कुछ पिस्ता का पेड़ कहते हैं। असल में यह एक टेरेबिंथ पेड़ था जो पिस्ता परिवार का है, लेकिन यह ओक का पेड़ नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यह धारणा कहां से आई। खुद को शुद्ध करने और विदेशी देवताओं के प्रतीकों को दफनाने के बाद कबीला लूज चला जाता है और वहां इसराइल वेदी बनाता है। लूज नाम से भ्रमित न हो, लूज बस वह नाम था जिसे कनानी लोग उस जगह को कहते थे। इब्रानी लोग इसे बेत एल कहते थे। हम बाइबल में इस दोहरे नामकरण को बहुत देखेंगे जिसमें अक्सर कनानी और इब्रानी दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता है। अचानक हमें पवित्र शास्त्र में यह दिलचस्प छोटी सी बात मिलती है। आपको याद होगा कि जब अब्राहम का सेवक एलियाजर इसहाक के लिए पत्नी के रूप में रिबेका को मेसोपोटामिया से वापस लाया था कि उसकी दासी या नानी उसके साथ कनान वापस चली गई। खैर, अब बहुत प्यारी दासी दबोरा मर जाती है और शिविर में बहुत शोक होता है। लेकिन तोरह में दबोरा का उल्लेख क्यों किया गया है, जो कि चीजों के बड़े दायरे में एक छोटी सी भूमिका निभाने वाली प्रतीत होती है। आखिरकार कुलमाता रिबका और लिया की मृत्यु इसराइल के निर्माण और गठन में प्रमुख महिला नायिका दर्ज भी नहीं की गई है, जबकि यहूदी विद्वानों के बीच स्पष्टीकरण सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। यह आम तौर पर माना जाता है कि दबोरा इसराइल और मेसोपोटामिया के बीच एक करी का प्रतिनिधित्व करती है, एक करी जिसे परमेश्वर खत्म करने की प्रक्रिया में है। हमने पिछले पाठ में जांच की है कि अब्राहम और इसहाक के लिए और इस बिंदु तक याकूब के लिए मेसोपोटामिया, जहां तक उनका संबंध था, खनान की तुलना में उनकी मातृभूमि अधिक थी। लेकिन खनान वह भूमि थी जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशज को वादे के अनुसार अलग रखा था, और इसलिए परमेश्वर इसराइल और एक विदेशी भूमि मेसोपोटामिया के बीच संबंधों की किसी भी धारणा को मिटाना चाहते थे। इसलिए दबोरा की मृत्यु इसराइल और फरात और टिग्रिस नदियों की भूमि के बीच किसी भी पारिवारिक संबंध या रिश्ते की मृत्यु का एक रूपक है। परमेश्वर एक बार फिर याकूब के सामने प्रकट होता है। परमेश्वर द्वारा बताई गई बातों का एक हिस्सा उसका आश्वासन और उन बातों दोहराना है जो याकूब को पहले ही बताई जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए उसका नया नाम और इसलिए नया स्वभाव इज़राइल है। हम सभी की तरह याकूब को भी परमेश्वर द्वारा लगातार सत्य की याद दिलाने की आवश्यकता थी, खासकर अगर यह उसके साथ एक नई वास्तविकता लेकर आए और उसके आदेशों और हमारे लिए उसके निर्देशों की। फिर भी परमेश्वर द्वारा नाम परिवर्तन के लिए इस आदेश को दोहराने का एक और कारण है, याकूब ने अपना नाम बदलकर इज़राइल रख लिया था, ईश्वर भविष्यवाणी द्वारा यर्दन नदी के दूसरी तरफ वादा किए गए देश के बाहर। अब जबकि याकूब वादा किए गए देश के अंदर है तो इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि याकूब के मन में उस युग में दुनिया के सभी लोगों के मन की तरह देवता असंख्य थे और वे क्षेत्रीय थे। जब याकूब का नाम पहली बार इसराइल में बदला गया तब भी वह मेसोपोटामिया के देवताओं के प्रांत में था और इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत था। अब जबकि याकूब कनान में है, वह एल शद्दाई यहोवा परमेश्वर के प्रांत में है जिसका क्षेत्र कनान है, और इसलिए उसे एल शद्दाई की आवश्यकता है कि वह पुष्टि करे कि जो कुछ उसे पहले बताया गया था वह अभी भी कायम है। क्या याकूब को विश्वास था कि उन्हें देवता भी थे? हाँ, याकूब ने गलती से सोचा कि यह सच है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उसकी सोच गलत थी, फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह और दया दिखाई और साथ निभाया और इस बात पर जोर नहीं दिया कि याकूब को एक ही बार में परमेश्वर के बारे में सभी सत्यों को समझना था, कि वह एक है, कि वह हर चीज का परमेश्वर है, कि अन्य देवता जैसी कोई चीज नहीं है। एक मिनट के लिए भी यह मत सोचिए कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक के साथ कई मामलों में नहीं खेलता है, जो है कुछ ऐसा जो मानव निर्मित सिद्धांत था और पवित्र शास्त्र पूरी तरह से इसका खंडन करता है। किसी तरह उसने चर्च में उस अंधे स्थान का उपयोग अच्छे के लिए किया ताकि दुनिया के गैर यहूदियों तक सुसमाचार फैलाया जा सके, लेकिन पिछले 50 वर्षों में उसने हमें सही करना शुरू कर दिया है। हमें दिखा रहा है कि उसने कभी भी इज़राइल को हमारे साथ नहीं बदला, न ही उसने कभी यह तय किया कि वह अपने लोगों के साथ समाप्त हो गया है। वह समय जब चर्च यहूदी लोगों को हमारे विश्वास के लिए ईर्ष्यालु बना देगा और उसके लोगों के पत्थर दिलों को नरम कर देगा ताकि वे अपने स्वयं के मसीहा को स्वीकार कर सकें, वह समय हमारे सामने है। अब ईश्वर की ओर से इस वार्तालाप का एक और जो सतह पर निरर्थक लगता है, लेकिन थोड़ा करीब से देखने पर इस मामले पर थोड़ा अलग प्रकाश पड़ता है, और यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं उन छोटे छोटे चक्करों में से एक लेना चाहता हूं जो मैंने आपको इस सप्ताह के पाठ की शुरुआत में बताए थे, जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल के जरिए परमेश्वर के काम करने के तरीके के बारे में मैंने जो सबसे बढ़िया वर्णन सुना है वह यह है कि वह पवित्र आत्मा के साथ मिलकर पवित्र शास्त्र के वचन का उपयोग करके हमें उत्तरोत्तर सत्य प्रकट करता है। किसी तरह मनुष्य दशकों और सदियों तक एक महान शास्त्र सत्य के प्रति पूरी तरह से अंधे बने रहते हैं और फिर अचानक वे उम्मीद है कि हम इसे देख पाते हैं। यहोवा द्वारा उत्तरोत्तर प्रकट किया जाना स्वीकार करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई भी साहित्य, उपन्यास, निबंध, जो भी हो, जिसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है, उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो पृष्ठ दर पृष्ठ आपको अधिक जानकारी मिलती है, क्योंकि पात्रों का विकास होता है, कथानक सामने आता है, विवरण जोड़े जाते हैं और फिर निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। यह उत्तरोत्तर रहस्योद्धाटन के सबसे सरल अर्थ का एक उदाहरण है। शास्त्र के मामले में वचन में जो कुछ भी बताया गया है वह भविष्यवाणी शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों होती है, और यह तब घटित हो रही थी और फिर से घटित होगी। भविष्यवाणी से निपटने में हमारे लिए कठिनाई यह है कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में शाब्दिक सत्य प्राचीन संस्कृति और लोगों के संदर्भ में शास्त्र द्वारा बताया गया है जिसमें इसे लिखा गया था। इसलिए हालांकि हम बाइबल की भविष्यवाणी का अध्ययन करके अंतरिक्ष और समय में आगे देख सकते हैं और प्रमुख भविष्यवाणी मील के पत्थर को काफी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विवरण काफी अस्पष्ट हो सकते हैं, फिर भी जैसे जैसे किसी विशेष भविष्यवाणी के पूरा होने का समय करीब आता है, पहेली के अंतिम टुकड़े अपनी जगह पर आने लगते हैं और पहले के अस्पष्ट विवरण ध्यान में आने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम उत्पत्ति एक में पढ़ते हैं कि महिलाओं का वंश सर्प के सिर पर प्रहार करेगा या उसे कुचल देगा। मेरे पास आपके लिए खबर है, आदम और हव्वा को इस बात का लगभग कोई अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब है, ये तो दूर की बात है कि ये कैसे होगा। और अगर हम आगे नहीं पढ़ेंगे लॉग तो हम भी अंधेरे में रहेंगे।
लेकिन धीरे धीरे पृष्ठ दर पृष्ठ पवित्र शास्त्र के माध्यम से हम इस बारे में अधिक विवरण सीखते हैं कि यह सब कैसे होगा। आदम से लेकर शेत तक विवरण जोड़े जाते हैं, शेत से लेकर नूह तक और अधिक विवरण जोड़े जाते हैं, नूह से लेकर शेम तक, फिर अब्राहम तक, फिर इसहाक तक, फिर याकूब तक और अब इज़राइल के गोत्रों के जन्म तक। पहेली के टुकड़े सामने आते रहते हैं, नई जानकारी जुड़ती जाती है और तस्वीर साफ होने लगती है। हम अभी अपने अध्ययन में एक बिंदु पर हैं जिसमें सटीक गोत्र यहूदा का निर्माण किया गया है, जिसमें से वह स्त्री का वंश आएगा जो शैतान को हराएगा और मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध बहाल करेगा। हालांकि याकूब को यह नहीं पता था, हम केवल इतना जानते हैं कि याकूब का बेटा यहूदा वह विशेष गोत्र होगा, क्योंकि हमारे पास पीछे देखने का लाभ है। भविष्यवाणी के दर्ज इतिहास का अध्ययन करने का, जैसा कि आधुनिक समय में हमारे सामने आश्चर्यजनक गति से प्रकट हो रहा है, हम हर महत्वपूर्ण विवरण जानते हैं। यह किस क्रम में हुआ, आमतौर पर यह कैसे हुआ और इसका क्या मतलब था। हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने हमारे पापों का भुगतान किया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। महिलाओं के वंश ने सर्प के सिर पर प्रहार किया और उसे क्रूस पर पराजित किया। बाइबल की अधिकांश भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं, फिर भी कुछ ऐसी हैं जो अभी भी पूरी होनी बाकी हैं। जैसे जैसे प्रत्येक भविष्यवाणियां पूरी होती है और हम देख सकते हैं कि यह कैसे हुआ, हमें इस बात की बेहतर तस्वीर मिलती है कि अधूरी भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कई जीवन कालों में हमने देखा है कि इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में फिर से जन्म लेता है और यरूशलेम को एक गैर यहूदियों से वापस ले लिया जाता है। यह जानकारी और जिस तरह से यह सब हुआ, अब हमें पूरी होनी वाली भविष्यवाणियों के अगले दौर के बारे में जानकारी देता है, ऐसी जानकारी जो हमसे ठीक पहले की पीढ़ियों के पास नहीं थी। फिर भी हमारे पास अभी विवरण नहीं है।
इसमें यह भी जोड़िए कि पवित्र आत्मा, जो हमारा सच्चा शिक्षक और परमेश्वर के रहस्यों का प्रकट करता है, इतिहास में अचित समय पर अलौकिक रूप से मनुष्य के मन और आत्मा को तेज कर देता है, ताकि हम शास्त्र में उन चीजों को देख और समझ सकें जिनके प्रति किसी कारण से मानव जाति अंधी रही है। हमारे समय में चर्च और यहूदी लोगों के बीच आध्यात्मिक संबंध की यह हाल ही की समझ और ईसाई और यहूदी के बीच विभाजन की दीवार को गिराने के लिए कई विश्वासियों द्वारा हाल ही में की गई इच्छा और इसराइल के लिए यह बहुत ही हालिया प्रेम, जिसे हम गैर यहूदी चर्च के भीतर फूटते हुए पाते हैं, इस रहस्यमय प्रगतिशील रहस्योद्घाटन का एक बढ़िया उदाहरण है।
इसलिए जब हम पुराने नियम को पारेंगे तो आश्चर्यचकित न हो कि हम कुछ चीजों को अलग तरह से देखेंगे, जिन्हें विद्वान मात्र 50 साल पहले नहीं देख पाए थे, कुछ मामलों में तो 15 या 20 साल पहले भी नहीं देख पाए थे, क्योंकि विवरण बहुत अस्पष्ट थे। लेकिन अब कुछ स्पष्ट हैं और मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वह इसका एक उदाहरण है।
परमेश्वर ने पाठ 11 में याकूब से कहा, बेहतर शेक राष्ट्र बल्कि राष्ट्रों का एक समूह तुमसे उत्पन्न होगा। अनुवाद है, एक राष्ट्र और राष्ट्रों का एक समूह तुझसे उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर राष्ट्रों के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि वह कह रहा है कि एक विशेष राष्ट्र होगा और इसके एक राष्ट्र एक वचन
ओ इसे जांचें, इसे एक पूरा समूह बनाएं, बल्कि वह कह रहा है कि एक विशेष राष्ट्र होगा और इसके अलावा राष्ट्रों का एक समूह होगा जो याकूब से आएगा। अंतर देखें।
खैर, यह और भी जटिल हो जाता है। हमने देखा कि उत्पत्ति 28 का 3 में
परमेश्वर ने याकूब से राष्ट्रों के एक समूह का वादा किया था, लेकिन जब हमने इब्रानी भाषा को देखा तो राष्ट्रों के समूह के लिए कहल अम्मीम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो अब्राहम से कही गई बातों के विपरीत था, जब परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम एक राष्ट्र का पिता होगा और बाद में कई राष्ट्रों का पिता होगा। उस उदाहरण में अब्राहम के साथ राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द गोए था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम गोए के पिता होगे, एक बड़े राष्ट्र, एक अनिर्दिष्ट राष्ट्र। दूसरी ओर परमेश्वर ने याकूब से कहा कि वह एक कहल अम्मीम उत्पन्न करेगा, साथ ही देशवासियों का एक सम्मेलन। अब्राहम कई तरह के राष्ट्र और लोगों को उत्पन्न करेगा, याकूब एक खास तरह के समरूप और पवित्र लोगों को उत्पन्न करेगा जो उद्देश्य में एकजुट होंगे, यह इज़राइल की मंडली होगी। ये काफी अंतर है। खैर, अब उत्पत्ति 28 के आज से कुछ समय बीत चुका है। यहां अध्याय 35 पाठ 11 में एक बार फिर से चीजें विकसित हुई हैं। परमेश्वर अब याकूब को मूल रूप से वही बात बताता है जो उसने अब्राहम से कही थी। पाठ 11 में इब्रानी शब्द गोए का उपयोग करते हुए, जिसका अर्थ है बड़े पैमाने पर राष्ट्र। लेकिन अब्राहम से जो कहा गया था उसे एक महत्वपूर्ण अंतर है। परमेश्वर कहता है कि याकूब गोए का पवित्र सम्मेलन तैयार करेगा। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि याकूब के दिनों तक परमेश्वर ने दुनिया को दो तरह के लोगों में बांट दिया था, इब्रानियों और बाकी सभी लोगों में। गोए बाकी सभी लोगों के लिए एक नाम है।
इसलिए मुझे पाठ 11 के उस भाग को स्पष्ट करने की अनुमति दें जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका अर्थ यही है, फलवंत बनो और बढ़ो। एक राष्ट्र और इसके अलावा इब्रानी और गैर इब्रानी दोनों राष्ट्रों का एक पवित्र सम्मेलन तुमसे उत्पन्न होगा। यह भ्रामक और यहां तक कि दोहरी बात लग सकती है, जब तक हम यह नहीं समझते याकूब से वादा की गई ये सभी शर्तें अंततः सच साबित होंगी। तकनीकी रूप से देखें तो याकूब ही पहला व्यक्ति था जिसने केवल इब्रानी बच्चे पैदा किए, इसराइल के 12 गोत्र। याकूब के पिता इसहाक ने इब्रानी याकूब और गैर हिबूर एसाव को जन्म दिया। इसहाक के पिता अब्राहम ने भी इब्रानी इसहाक और गैर इब्रानी इश्माइल और कई अन्य दोनों को जन्म दिया। बाद में एक घटना में जिसे हम उत्पत्ति के अंत में कवर करेंगे, याकूब अपने बेटे यूसुफ के दो मिस्री बच्चों को उससे दूर ले जाता है। उनमें से एक एप्रैम उस अधिकार को संभालता है जो यूसुफ का होता। उस घटना के सैकड़ों साल बाद भी एप्रैम एक इसराइली जनजाति जिसमें मिस्र का खून मिला हुआ था, विजयी अश्शूरियों द्वारा तितर बितर कर दिया जाएगा और उनकी आबादी के बड़े हिस्से के जीन गैर यहूदी दुनिया के साथ मिल जाएगा। फिर एक भविष्यवाणी की घटना में जो अब तक नहीं हुई है, जैसा कि यहेजकेल में वर्णित है, एप्रैम किसी तरह यहूदा के गोत्र के अवशेषों आधुनिक समय के यहूदियों के साथ फिर से जुड़ जाएगा।
मैं उत्पत्ति 35:11 की इस भविष्यवाणी पर इतना क्यों खर्च कर रहा हूं, क्योंकि इसका प्रकटीकरण शुरू हो चुका है। आप देखिए, यह भविष्यवाणी यहेजकेल 37 की भविष्यवाणी से भी सहजता से जुड़ती है, जो बताती है कि अंतिम समय में एप्रैम और यहूदा अलौकिक रूप से एक साथ वापस आएंगे। अब उत्पत्ति 35:11 को ध्यान में रखते हुए सुनिए, जब मैं आपको यहेजकेल 37 पढ़ाता हूं, पद 15 से शुरू करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। सबसे पहले परमेश्वर ये कहने जा रहा है कि वह किसी तरह इस खोए हुए और बिखरे हुए और अवशोषित इब्रानी लोगों के समूह को घर वापस लाएगा, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा गैर इब्रानी बन गया, और इसे उस समूह के साथ फिर से जोड़ेगा जिसने अपनी इब्रानी पहचान यहूदा यहूदियों को दृढ़ता से बनाए रखा है। फिर मैं चाहता हूं कि आप सुने कि परमेश्वर इसे कैसे करने जा रहा है। फिर उस पवित्र सम्मेलन के बारे में सोचें जो अंततः याकूब से आएगा और देखें कि कैसे वह पवित्र सम्मेलन चमत्कारिक रूप से फलित होता है।
यहेजकेल 37 का 12
को पढ़ें। परमेश्वर ने पवित्र सभा को अपनी पूर्णता तक पहुंचाया है। वह अपनी पवित्र सभा के साथ निवास कर रहा है। दाऊद के घराने का एक सदस्य हमेशा के लिए इज़राइल का हमारा राजा होगा। वह राजा कौन है? यीशु पवित्र सभा के सभी लोगों का एक ही चरवाहा होगा। हमारा चरवाहा कौन है? दाऊद के घराने का यीशु। यह कैसे होगा? यह अभी भी पूरी तरह से जानने के लिए बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं आपको पूर्ण नियुचितता के साथ बता सकता हूं कि एप्रैम को यहूदा के साथ वापस लाने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। इस वर्ष ही इसराइल की सरकार ने मान्यता दी है कि एप्रैम को बनाने वाली 10 खोई हुई जनजातियां इतनी खोई हुई नहीं थीं, और वे अभी भी मौजूद हैं, और उन्होंने 2500 से अधिक वर्षों से अपनी इब्रानी विरासत की स्मृति को बनाए रखा है। इन लोगों को अब इसराइल में प्रवास करने की अनुमति दी जा रही है, यहूदियों के रूप में नहीं बल्कि इसराइलियों के रूप में, एप्रैम के रूप में। और इस घटना का पहला संकेत वह है जो हमने अभी पढ़ा है, उत्पत्ति 35 पाठ 11 में। यह नियुचित रूप से अब्राहम और फिर इसहाक से परमेश्वर द्वारा कही गई बातों की पुनरावृत्ति नहीं है। यह काम पर प्रगतिशील रहस्योद्धाटन है। मुझे पता है कि यह आप में से कई लोगों के लिए नया है और शायद थोड़ा भ्रमित करने वाला भी है। इसका एक कारण यह है कि 1990 से पहले प्रकाशित बाइबल के विद्वानों के लेखन में आपको एप्रैम के बारे में चर्चा करने वाला बहुत कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपने नियुचित रूप से मुख्य धारा के संप्रदायों में इसके बारे उपदेश नहीं सुने होंगे। फिर भी एप्रैम को बाद के दिनों के बारे में यशायाह और यहेजकेल के भविष्य सूचक शास्त्रों में बहुत केंद्रीय बनाया गया है। हमारे ईसाई और यहूदी विद्वानों ने इसे कैसे अनदेखा किया है? जब एप्रैम की भूमिका भले ही पूरी तरह से परिभाषित न हो, आज इतनी महत्वपूर्ण और स्पष्ट हो गई है, क्योंकि अभी समय नहीं था और क्योंकि शास्त्रों में एप्रैम के महत्व को समझने के लिए हमें कई अन्य घटनाओं का सामना करना पड़ था। इसलिए हम में से जिन्होंने इसे समझा है, हमें ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह आशीर्वाद दिया है, और चर्चों के 99 लोगों के साथ धैर्य रखना चाहिए जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हम भी उसी नाव में थे। खैर, याकूब आगे बढ़ने वाला है, तो चलिए हम भी उसके साथ आगे बढ़ते हैं। बेतेल से कबीला अब इफ्रात नामक स्थान पर चला गया। काफी समय बाद इफ्रात के या बेत लेकम के नाम से जाना जाने लगा, बेथलहम, मसीह का जन्म स्थान। याकूब की प्रिय राहेल अपने अंतिम पुत्र, इज़राइल की 12वीं और अंतिम जनजाति को जन्म देते हुए मर जाती है। प्रसव के दौरान यह संदेह करते हुए कि वह जीवित नहीं रहने वाली है, राहेल ने इस बच्चे का नाम बेनोनी रखा, मेरे दुख का बेटा। लेकिन बाद में संभवतः राहेल के गुजर जाने के बाद याकूब ने उसका नाम बदलकर बिन्यामीन रख दिया, जिसका अर्थ है बुढ़ापे का बेटा या खुशी का बेटा। हम उसे बिन्यामीन कहते हैं। राहिल को दफनाया गया और इज़राइल फिर से चला गया थोड़ी दूरी पर, इस बार मिग्दल एडर नामक स्थान के पास, जिसका अर्थ है झुंड का प्रहरी दुर्ग। 1800 साल बाद यह वह मीनार होगी जहां से रात में खेत में झुंडों की रखवाली करने वाले चरवाहे स्वर्गदूतों को दुनिया के उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा करते और आनंदित होते देखेंगे। सैकड़ों साल बाद राहेल की कब्र की जगह के बारे में अच्छी तरह से पता चला और शमूएल की किताबों में उसकी कब्र पर रखे पत्थर के निशान को एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। वह जगह आज भी बेतलहम से लगभग 1 मील में मौजूद है। यहीं पर एक साधारण कथन में हमें बताया गया है कि याकूब के ज्येष्ठ पुत्र रूबेन ने याकूब की रखेल बिलाह के साथ संबंध बनाए थे और याकूब को इस बात की जानकारी थी। बिलाह राहेल की दासी थी। इस अपराध के बारे में अभी और कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन समय के साथ ये इज़राइल के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालने वाला साबित होगा।
आइए हम यहाँ एक और छोटा सा चक्कर लगाते हैं और रूबेन और बिलाह के बीच की स्थिति की जाँच करते हैं, क्योंकि यह उस समय की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहता है और इसका इसराइल के भविष्य पर असर पड़ता है।
यह कोई संयोग नहीं है कि राहेल की मृत्यु और फिर रूबेन द्वारा बिलाह को ले जाने की बात एक के बाद एक कही जाती है, क्योंकि वे सीधे तौर पर झुरे हुए हैं। बिलाह राहेल की दासी थी, लेकिन बिलाह याकूब की रखेल पत्नी भी थी। बिलाह ने दान और नप्ताली को जन्म दिया। बिलाह के साथ यौन संबंध बनाते समय रूबेन ने बहुत ही सोच समझकर काम किया। उसका इरादा था कि इसके परिणाम स्वरूप याकूब खुद ऐसा नहीं करेगा जो उस समय काफी आम था, एक रखेल पत्नी को पूर्ण कानूनी के पद पर पदोन्नत करना जब एक पूर्ण कानूनी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। रूबेन लिया का बेटा था, और जैसा कि हम उन दूदाफलों की कहानी के बारे में सोचते हैं जो रूबेन ने अपनी मां के लिए इकट्ठ किए थे, रूबेन अपने पिता याकूब की नजरों में अपनी मां की स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत था। राहेल प्रथम थी लिया के लिए याकूब की एकमात्र पत्नी, और इसलिए उसकी सबसे प्रिय पत्नी के रूप में दर्जा हासिल करने का एक अवसर। हालांकि रूबेन का चिंता थी कि याकूब लिया के बजाय राहेल की दसी बिलाह के साथ खुद को सांत्वना देने का फैसला कर सकता है। ये केवल ईर्ष्या या भावना से अधिक था। याकूब के पसंदीदा व्यक्ति का पुत्र होने की स्थिति ठोस लाभ लेकर आई, और इतने वर्षों तक यूसुफ और यूसुफ की मां राहेल के अधीनस्थ रहने के बाद वह बिलाह को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देने वाला था। बिलाह को ले जाकर उसने उसे बर्बाद कर दिया। अब याकूब बिलाह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि रूबेन के साथ यौन संबंध बनाने के कारण वह अवांछनीय हो गई थी। याकूब के लिए ऐसी महिला से शादी करना कल्पना से परे शर्मनाक हायता, जो किसी दूसरे आदमी के साथ सो चुकी हो, उसके पति के बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं।
इसलिए रूबेन चाहता था कि यह कृत्य लोगों का पता चले। यह जरूरी था कि बिला के साथ उसने जो किया वह लोगों को पता चले, ताकि याकूब बिलाह को स्वीकार न करे, और इसलिए लिया रानी मधुमक्खी बन गई। यही कारण है कि पद 22 के अंत में ये चार छोटे शब्द और इसराइल का पता चल गया बहुत महत्वपूर्ण है।
याकूब को यह पता लगाना था कि क्या रूबेन की योजना सफल होगी। तलमूड में इस विषय पर एक कथन है जो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सारांशित करता है। उसने रूबेन ने कहा, यदि मेरी मां की बहन मेरी मां की प्रतिद्वंद्वी थी, तो क्या मेरी मां की बहन की दासी मेरी मां की प्रतिद्वंद्वी होगी? अब मैं सबसे ऊपर चेरी डालता हूं। इस युग के दौरान यह प्रथा थी कि एक नेता जो दूसरे नेता को हरा देता था, या एक बेटा जो अपने पिता से नेतृत्व संभालता था,
संभवतः पिता की मृत्यु के कारण, उस नेता की रखेलों को भी अपने कब्जे में ले लेता था। नए नेता द्वारा पूर्व नेता की रखेलों को अपने कब्जे में लेना उस नए नेता की स्थिति और अधिकार की पुष्टि और वैधता थी।
रूबेन और बिलाह के बीच यह पूरा प्रकरण इज़राइल के नेता के रूप में याकूब के अधिकार के लिए स्पष्ट रूप से समझी गई चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। रूबेन का कार्य चालाकीपूर्ण और राजनीतिक था। बिलाह के साथ यौन संबंध बनाने का कुछ पलों के आनंद से कोई लेना देना नहीं था। यह एक स्पष्ट तख्ता पलट का प्रयास था। रूबेन इसराइल का नेता बनना चाहता था। यही कारण है कि कुछ समय बाद याकूब ने रूबेन को जेठे के पद से हटाकर यहूदा को दे दिया। याकूब की बात सुनो, जब वह अपने जीवन के करीब पहुंचता है और वह अपने बेटों को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा करता है। हम इसे उत्पत्ति 49 में पाते हैं। उत्पत्ति 49:1, तब याकूब ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, इकट्ठे हो जाओ कि मैं तुम्हें बताऊं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। 2, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो और अपने पिता इज़राइल की बात सुनो। 3, रूबेन, तू मेरा बल और मेरी शक्ति का आदि है, तू प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ है। 4, तू जल के समान अनियंत्रित है, इसलिए तू प्रधानता न पाएगा। रूबेन द्वारा समय से पहले अपने पिता की जगह लेने का प्रयास न केवल असफल हुआ, बल्कि यह इतना उल्टा पर गया कि रूबेन ने ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार खो दिए।
याकूब के बेटों की संक्षिप्त सूची के बाद हमें यह रोचक जानकारी दी गई है कि याकूब इज़राइल कमरे में अपने पिता यित्सचक के पास घर आया। दूसरे शब्दों में इसहाक याकूब के जरिए अपने सभी पोते पोतियों से मिलने के लिए जीवित रहा, और फिर इसहाक की मृत्यु अंततः 180 वर्ष की आयु में हुई। ऐसा आया और याकूब के साथ मिलकर उन्होंने इसहाक को हिब्रोन में दफनाया।
पद 29 में दिए गए कथन पर ध्यान दीजिए कि इसहाक की मृत्यु हो गई और अपने कुटुंबियों के पास जा मिला। यहां कुछ शब्द हैं जो मृत्यु के बाद किसी के साथ क्या होता है इस बारे में अस्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, और कुछ हद तक पूर्वजों की पूजा की निरंतरता को दर्शाते हैं। क्या वे वास्तव में सोचते थे कि इसहाक था?
अब वह अपने पूर्वजों के साथ मृत्यु के दूसरी ओर रह रहा है, संभवतः किसी अनिर्धारित तरीके से। लेकिन अब तक यह अभिव्यक्ति मुख्य रूप से एक लंबे जीवन काल के बाद एक शांतिपूर्ण मौत को इंगित करती थी। इसहाक के बारे में ऐसी बात नहीं कही जाती अगर उसकी हत्या कर दी जाती, या वह कम उम्र में मर जाता, या उसे कानून तोड़ने के लिए मार दिया जाता।
अगले सप्ताह अध्याय 36।